चौथा, जावा में भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ। सुमात्रा के पूर्व में जावा की स्थिति है, जिसे सुंडा का जलडमरू मध्य सुमात्रा से पृथक करता है। इस द्वीप की लंबाई 622 मील है और चौड़ाई 55 से 121 मील तक। मदुरा और समीप के कतिपय द्वीपों को सम्मिलित करके जावा का क्षेत्रफल 51,000 वर्ग मील के लगभग है। क्षेत्रफल से यह सुमात्रा से एक तिहाई से भी कम है, पर इंडोनेशिया का यह सबसे आबाद द्वीप है और इसकी जनसंख्या 3 करोड़ से भी अधिक है। सघन आबादी का मुख्य कारण जावा की उपजाऊ तथा शस्य श्यामल भूमि है। चावल, गन्ना, कॉफी, तंबाकू, चाय, नील आदि वहां प्रचुरता से उत्पन्न होता है। वहां के जंगल भी बड़े सघन और उनके वृक्षों की लकड़ी बहुत कीमती है। जावा की सागौन की लकड़ी इमारती काम के लिए बहुत विख्यात है। जावा के समुद्र तट के साथ साथ भी अनेक द्वीप विद्यमान हैं, जिनमें मदुरा या मथुरा मुख्य है, जो जल डमरू मध्य द्वारा जावा को मदुरा से पृथक करता है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 1 मील से भी कम है। यही दशा कुछ अन्य द्वीपों की भी है, इसलिए उन्हें जावा का ही अंग माना जाता है। बर्मा, मलाया और सुमात्रा के समान जावा में भी भारतीयों ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, पर दुर्भाग्य से इन उपनिवेशों का प्रारंभिक इतिहास अभी अज्ञात है। रामायण में यवद्वीप का उल्लेख मिलता है, यह पहले लिखा जा चुका है। उसके यतवंतो यवद्वीपम सप्तराज्यो पशोभितम स्वर्ण रूप्यक दीपम स्वर्णाकरम मंडितम, वाल्मीकि रामायण 2:11 श्लोक में यवद्वीप का स्वर्णद्वीप के अंतर्गत रूप से उल्लेख है और इस श्लोक को अन्य भी अनेक प्राचीन ग्रंथों से उद्धृत किया गया है। तालमी ने भी ई अबादयू नामक स्थान का उल्लेख किया है। यवद्वीप और ई अबादयू जावा के ही नाम थे, यह प्रायः सभी विद्वानों को स्वीकार है। रामायण ईस्वी सन के प्रारंभ काल तक अपने वर्तमान रूप में आ चुकी थी और तालमी का समय 2री सदी में था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ईस्वी सन की 1ली सदी तक यवद्वीप या जावा भारतीयों को ज्ञात हो चुका था और वहां उन्होंने अपनी बस्तियां बसानी प्रारंभ कर दी थी। जावा के इन प्राचीनतम भारतीय उपनिवेशों के संबंध में जो भी जानकारी इस समय उपलब्ध है, उनके 2 स्रोत हैं। पहला, जावा में प्रचलित पुरानी अनुश्रुतियां या दंतकथाएं, और दूसरा, चीन के प्राचीन ग्रंथों में संकलित वृत्तांत। सर स्टैमफोर्ड रैफल्स नामक विद्वान ने 19वीं सदी के प्रारंभ में जावा के इतिहास पर ग्रंथ लिखा था, जिसमें वहां की प्राचीन अनुश्रुतियां भी संकलित हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार जिन उपनिवेशकों ने जावा में सबसे पूर्व अपनी बस्ती बसाई थी, उनका नेता अजस्सी था, जो अस्तिन के राजकुल से संबंध था। अस्तिन हस्तिनापुर का अपभ्रंश है। जावा की इस प्राचीन अनुश्रुति में अजिशक के नेतृत्व में उस द्वीप में गए उपनिवेशकों का संबंध है, हस्तिनापुर के कुरुवंश के साथ जोड़ा गया है। जावा की ही एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार हस्तिनापुर या अस्तिन के राजकुल के लोग पहले गुजरात में जाकर बसे थे और बाद में उनके वंशज वहां से जावा गए थे। जावा की एक अन्य प्राचीन अनुश्रुति में उस द्वीप में भारतीय उपनिवेश स्थापित करने का श्रेय कलिंग को दिया गया है। किलंग कलिंग के राजा ने 20,000 परिवारों को जावा में बसने के लिए भेजा था, जहां उनके सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि होती रही, पर सभ्यता के क्षेत्र में वे कोई उन्नति नहीं कर सके। पर बाद में जावा के संबद 286 जावा में शक संबद का प्रचलन था, में ईश्वर की कृपा से वहां कानू नाम का एक राजा हुआ, जिसने वहां के निवासियों को उन्नति पथ पर अग्रसर करना प्रारंभ किया। कुछ सदियों के बाद वहां अस्तिन राज स्थापित हुआ, जिसके राजा क्रमशः पुलसर, अभियास, पांडु, देवनाथ और जय भय हुए। इस अनुश्रुति में जो भी नाम आए हैं, उनका महाभारत की कथा के साथ संबंध अस्तिन और हस्तिनापुर के एक होने के बाद ऊपर लिखी जा चुकी है। पुलसर पराशर का अभियास व्यास का और जय भय जय भम का रूपांतरण है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। पर जावा में प्रचलित बहुसंख्यक अनुश्रुतियों के अनुसार जिस अजिंसक द्वारा वहां उपनिवेश स्थापित किया गया था वह अस्तिन हस्तिनापुर के पांडव राजा का मंत्री था और उसने जावा के संवत शक संवत के प्रथम वर्ष में उस द्वीप में पदार्पण किया था। इस द्वीप का नाम पहले नुसा केंदंग था और वहां रसक राक्षस लोक का निवास था और जीसक द्वारा वहां सभ्यता का सूत्रपात किया गया और इस द्वीप का नाम यवद्वीप जावा रखा गया। और जीसक के संबंध में जो विविध अनुसृतियां जावा में प्रचलित हैं उनमें उसे अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कुछ के अनुसार वह एक शक्तिशाली राजकुमार या राजपुरुष था और उसने जावा में जाकर एक समृद्ध उपनिवेश की स्थापना की थी। कतिपय अनुश्रुतियों में अजीसक को एक ऋषि या देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर तब इस संबंध में एक मत है कि उसी द्वारा जावा में सुव्यवस्थित शासन धर्म तथा विद्या अध्ययन का सूत्रपात किया गया था। जावा में भारतीय उपनिवेश की स्थापना के संबंध में चीनी साहित्य में भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं विद्यमान है। फाई सीन ने 15वीं सदी में सिंगच शेंगलन नाम से एक ग्रंथ लिखा था जिसके अनुसार जावा के दूत जब 1432 ईस्वी में चीन के सम्राट की सेवा में भेंट लेकर आए तो उन्होंने एक पत्र भी अर्पित किया जिसमें लिखा था कि उनका राज्य 1376 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 56 ईस्वी में जावा में अजीसक द्वारा भारतीय उपनिवेश की स्थापना की गई थी। शक संवत और ईस्वी सन में 78 वर्षों का अंतर है। जावा की एक अनुश्रुति के अनुसार अजीसक ने जावा संवत शक संवत के प्रथम वर्ष में उस द्वीप में पदार्पण किया था। फाइसेन ने वहां सभ्यता के श्री गणेश का समय 56 ईस्वी में माना है जो शक संवत के प्रारंभ से 22 साल पहले पड़ता है। दोनों में अंतर इतना कम है कि उनमें जो असंगति है उसे किसी साधारण भूल का परिणाम समझा जा सकता है। चीनी साहित्य से बाद के जावा के इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार ए तियाओ के राजा तियाओ पियन ने 132 ईस्वी में अपना राजदूत चीन के राजदरबार में भेजा था। पेलियो ने ये तियाओ को यवद्वीप जावा का चीनी रूप प्रतिपादित किया है और फरा के अनुसार तियाओ पीएन का संस्कृत रूप देववर्मा है। पेलियो और फरा द्वारा चीनी शब्दों के जो संस्कृत रूपांतरण प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सही मानने पर यह भी स्वीकार करना होगा कि दूसरी सदी तक जावा में भारतीय राज भली भांति स्थापित हो चुका था और उसके राजसिंहासन पर भारतीय राजा आरूढ़ थे। तीसरी सदी में भी चीनी और जावा में राजनयिक संबंध कायम रहा, पर पांचवीं सदी के चीनी साहित्य से जावा पर जो प्रकाश पड़ता है वह विशेष महत्व का है। भारत से लंका होकर चीन वापस जाते हुए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान 414 से 415 ईस्वी में 5 मास जावा में ठहरा था। उस समय इस द्वीप में पौराणिक हिंदू धर्म का प्रचार था, पर कुछ समय पश्चात वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही वह वहां का प्रधान धर्म बन गया। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को प्राप्त है। गुणवर्मा की किमपिन के राजा संघानंद का पुत्र था और उसकी प्रवृत्ति शुरू से ही धर्म की ओर थी। राजसिंहासन का परित्याग कर उसने बौद्ध भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण किए और लंका चला गया। कुछ समय वहां रहकर वह यवद्वीप गया। वहां की राजमाता ने स्वप्न में एक भिक्षु को देखा जो जहाज पर यवद्वीप आ रहा था। अगले दिन प्रातःकाल गुणवर्मा समुद्र मार्ग से यवद्वीप पहुंच गया। राजमाता ने उसका उपदेश सुन बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात माता के प्रभाव से यवद्वीप के राजा ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसी समय एक शत्रु सेना ने यवद्वीप पर आक्रमण किया। अहिंसा प्रधान बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई कि शत्रु का सामना करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया। उन्होंने कहा, दस्युओं को दंड देना हिंसा नहीं है, उन्हें नष्ट करना धर्म है। यवद्वीप का राजा बौद्ध धर्म तथा गुणवर्मा कि इतने प्रभाव में था कि उसने राजगद्दी का प्रत्याग कर भिक्षु व्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, पर मंत्रियों के अनुनय विनय करने पर उसने इस शर्त पर राजा बने रहना स्वीकार किया कि उसके राज में प्राणियों को हिंसा बंद कर दी जाए। चीनी साहित्य में गुणवर्मा को की पिन के राजा का पुत्र कहा गया है। की पिन से काश्मीर अभिप्रेत है या कपिशा, अफगानिस्तान में। इस पर विद्वानों में मतभेद है, पर बहुसंख्यक विद्वान गुण वर्मा को कश्मीर का ही राजकुमार मानते हैं। गुण वर्मा ने केवल जावा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया, अपितु उनकी कृति चीन भी पहुंच गई और वहां के राजा ने उन्हें अपने देश में निमंत्रित किया। नंदी नाम के भारतीय व्यापारी के जहाज से 431 ईस्वी में वह चीन पहुंचे और वहां पर उनकी मृत्यु हुई। गुण वर्मा का जो वृतांत चीनी साहित्य में विद्यमान है, उससे यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि 5वीं सदी में जावा का चीन के साथ घनिष्ठ संबंध था और इन दोनों के प्रतिनिधि एक दूसरे के देश में आते जाते रहते थे। इसीलिए चीनी साहित्य में जावा के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने कि चीन के राजदरबार में अपने दूत भेजे थे। संभवतः 5वीं सदी में संपूर्ण जावा द्वीप किसी एक राजा के शासन में नहीं था, वहां अनेक राज्यों की सत्ता थी जिनके राजा चीन के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करते रहते थे। ऐसा एक राज्य होलोतान था जहां से 434 और 452 ईस्वी के बीच में 5 दूत मंडल चीन भेजे गए थे। होलोतान के राजा द्वारा भेजे गए इन दूत मंडलों के अतिरिक्त चीनी ग्रंथों में 2 अन्य दूत मंडलों का उल्लेख है जिन्हें जो पो के राजा ने 433 और 435 ईस्वी में चीन भेजा था। जो पो को जावा या यवद्वीप का चीनी रूपांतर माना जाता है और 435 ईस्वी में उसके जिस राजा ने अपने राजदूत चीन भेजा था, चीनी ग्रंथों में उनका नाम चेली पो तालो अलापामो लिखा गया है। विविध विद्वानों द्वारा इसे संस्कृत के श्रीपादधर वर्मण भट्टार द्वारा वर्मण या श्रीपादपूर्ण वर्मण का चीनी रूपांतरण प्रतिपादित किया गया है। प्रायः एक ही समय में चोपो तथा होलोतान से राजदूतों के चीन भेजे जाने से यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों राज्यों में क्या संबंध था। चीनी विवरणों का सूक्ष्मता से विवेचन कर विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि 5वीं सदी में जावा में अनेक राज्यों की सत्ता थी जिनमें ए होलोतान भी था। चोपो जहां संपूर्ण यवद्वीप को कहते थे, वहां उस द्वीप में इस नाम का एक राज्य भी था जो होलोता से भिन्न था। वस्तुतः चीनी ग्रंथों से जावा और उसके प्राचीन राज्यों के विषय में जो विवरण मिलता है वह इतना अस्पष्ट है कि उससे किसी सुनिश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। सुई वंश के काल 586 से 618 ईस्वी के 2 चीनी ग्रंथों में तूपो नामक एक देश का उल्लेख है जिसमें 10 राजधानियों या नगरों की सत्ता थी। इनके शासक राजा कहते थे। पेलियो ने तूपो की जावा के साथ एकता प्रतिपादित की है और चीनी विवरण से यह परिणाम निकाला है कि 6 सदी में जावा 10 या अनेक राज्यों में विभक्त था। तांग वंश के काल 618 से 706 ईस्वी के प्राचीन चीनी इतिहास में ऐसे 28 सामंत राजाओं का उल्लेख है जो जावा के राजा को अपनी अधिपति स्वीकार करते थे। होलोतान इनमें एक था। इसके अतिरिक्त एक राज्य होलिंग था। तांग वंश के सम्राटों के साथ जिसके राजाओं का राजनयिक संबंध विद्यमान था, संभवतः होलिंग के राजाओं ने जावा के अन्य सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया था और उनके राजाओं की स्थिति होलिंग के सामंतों के सदृश हो गई थी। इसलिए तांग युग के ग्रंथों में संपूर्ण जावा के लिए भी होलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। होलिंग को कलिंग का चीनी रूपांतर माना गया है। संभवतः भारत के कलिंग प्रांत से बहुत से उपनिवेशकों ने जावा में अपनी बस्तियां बसाई थी। जावा की एक अनुश्रुति के अनुसार कलिंग के राजा ने 20,000 परिवारों को वहां बसने के लिए भेजा भी था। जावा के एक राज्य का नाम जो होलिंग पड़ा, वह कलिंग से आकर वहां बसे हुए लोगों के कारण ही था। सुदूर जावा में जाकर उन्होंने नए कलिंग होलिंग की स्थापना की थी। संभवतः होलिंग का राज मध्य जावा में था और होलोतान की स्थिति पश्चिमी जावा में थी। इन राज्यों के जो कतिपय शिलालेख व पुरातत्व संबंधी अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से यह परिणाम निकाला गया है। इन 2 के अतिरिक्त अन्य भी अनेक राज्य जावा में विद्यमान थे, पर चीनी ग्रंथों से उनके इतिहास पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। 5वां, जावा के प्राचीन अभिलेख। जावा में कतिपय ऐसे उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे वहां के प्राचीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ये लेख संस्कृत में है और चीनी विवरणों की तुलना में ये बहुत अधिक प्रामाणिक है। इनमें सबसे पुराने वो चार शिलालेख हैं जो बटाविया के समीप मिले हैं। बटाविया पश्चिमी जावा का मुख्य नगर है और वहाँ समुद्र तट पर स्थित है। पहले तीन शिलालेख बटाविया के समीप ची अरुतोन जम्बू और कबोन कोपी नामक स्थानों से प्राप्त किए गए हैं और चौथा शिलालेख तुगु से मिला है जो स्थान समुद्र के तट पर है। पहले तीन शिलालेखों में पूर्ण वर्मा नाम के एक राजा का उल्लेख है जिसकी राजधानी तारुम या तारुमा नगरी थी। पूर्ण वर्मा को अवनीपति और प्रचुर रिपुशरा भेद विख्यात वर्मा बहुत से शत्रुओं के शर जिसे कभी परास्त नहीं कर सके कहा गया है। चौथा लेख भी पूर्ण वर्मा का है और उसे इस राजा के 22वें शासन वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। यह लेख विशेष महत्व का है क्योंकि इसमें जहां पूर्ण वर्मा के पितामह को राजाश्री और पिता को राजा धीराज कहकर स्मरण किया गया है, वहां साथ ही तारुमा के राजाओं की कतिपय कृतियों का भी इसमें उल्लेख पाया जाता है। पूर्ण वर्मा के गुरु पिता राजा धीराज ने चंद्रभागा नाम की एक नहर खुदवाई थी जो पूरी तारुमा के पास से होकर समुद्र में जा गिरती थी। राजा पूर्ण वर्मा ने स्वयं भी एक नहर का निर्माण कराया था जिसका नाम गोमती था। इसका निर्माण के संबंध में शिलालेख के ये श्लोक उद्धरण की योग्य है। नरेंद्र ध्वज भूतेन श्रीमिता पूर्ण वर्मा न प्रारभ्य फाल्गुने मसी खाता कृष्णाष्टमितो चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम दिनय सिस्तह कविष्कय आयता षट सहस्रेण धनुष्याम सहस्तेन च दाविश्येन नदी रम्या गोमती निर्मल लोदका पितामहस्या राजवर्षे विदाया शिवराव वनिजम ब्राह्मणय गय सहस्रेण प्रायति कृत दक्षिण। राजा पूर्णवर्मा ने गोमती नाम की जो नई नहर खुदवाई थी वह 61,022 धनुष लंबी थी। उसकी खुदाई फागुन नदी अष्टमी को शुरू हुई थी और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन वह बनकर तैयार हो गई थी। उसके बनने में केवल 21 दिन लगे थे। नहर के निर्माण के पूरा होने जाने पर राजा पूर्णवर्मा ने 1,000 गौवे ब्राह्मण को दक्षिणा में प्रदान की थी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णवर्मा पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था। यह तो वह स्वयं भारतीय था और उसने भारतीय धर्म तथा संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया था। बटाविया के समीप प्राप्त हुए पूर्ण वर्मा के पहले दो शिलालेखों पर अभिलेखों के साथ साथ पद चिन्ह भी उत्कीर्ण हैं जिन्हें राजा के अपने पैरों का चिन्ह पाद बिंब द्वय कहा गया है। तस्येद पंबा बिंब यमरनीकरो तासदने नित्य दक्षम भक्तानाम यन नृपानाम भवती शुककरम शल्य भूतन रिपूनाम। शिला पर उत्कीर्ण पूर्ण वर्मा के दोनों पैरों के बिंब को भक्त नृपतियों अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं के लिए सुखकर और शत्रुओं के लिए शल्य रूप बताया गया है। इन पदबिंबों की तुलना विष्णु के पदों से यह कहकर की गई है। विक्रांत श्याविन पतः श्रीमतः पूर्णवर्मन तारुमनगरय नंद्रश्य विष्को निपर पदद्वयम। रामायण में जहाँ यवदीप और उसके समीप के अन्य द्वीपों का वर्णन है वहीं उसी प्रसंग में विष्णु के तीन पदों का भी उल्लेख किया गया है। तत्र योजन विस्तारम उच्छितम दशयोजनम श्रृंगम सौमनशम नाम जात रूपमयम ध्रुवम तत्र पूर्वम पद कृतम पुरा विष्णु त्रिविक्रमे द्वितीयम शिखरे मोयरोश्चकार पुरुषोत्तम। रामायण के इन श्लोकों के अनुसार विष्णु ने जब अपने पद उठाए तो पहला पद उन्होंने सौमनस पर्वत श्रृंग पर रखा और दूसरा मेरु पर्वत के शिखर पर। विष्णु पदों की पूजा की परंपरा पौराणिक हिंदू धर्म के विद्यमान है। राजा पूर्ण वर्मा ने भी उसका अनुकरण कर अपने पदबिंब शिलाओं पर उत्कीर्ण कराए थे ताकि भक्त नृपति तथा प्रजाजन इन सुखकारी पदबिंबों की पूजा कर सके। यवदीप के प्रसंग में ही विष्णु पदों का जो उल्लेख रामायण में किया गया है उससे यह अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि विष्णु पदों की पूजा का सूत्रपात जावा में ही हुआ था या यह पूजा वहां भली भांति प्रचलित थी जिसके कारण तारु मन गरेंद्रम पूर्ण वर्मा ने भी अपने पादद्वय के बिंब प्रजा द्वारा पूजित होने के प्रयोजन से शिलाओं पर उत्कीर्ण करा दिए थे। बटाविया के समीप कबोन कोपी से प्राप्त हुए पूर्णवर्मा के तीसरे शिलालेख के साथ हाथी के पाद उत्कीर्ण हैं, जिन्हें एरावत हाथी के पाद कहा गया है। एरावता भस्य विभाति पदम बद्धयम्। पौराणिक अनुश्रुति में एरावत हाथी को दैवी या लोकोत्तर समझा जाता है। अतः यदि देव गुण संपन्न राजा पूर्णवर्मा के पद बिंबों के साथ ही उसके एरावत आदि हाथी के पद बिंबों की भी पूजा की जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बटाविया के क्षेत्र से प्राप्त शिलालेखों के कारण जावा में राजा पूर्णवर्मा की सत्ता के संबंध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उनसे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि इस राजा की राजधानी तारुमा नगरी थी, पर इन शिलालेखों पर कोई संबंध अंकित नहीं है। अतः पूर्णवर्मा के काल का अनुमान केवल इन अभिलेखों की लिपि के आधार पर ही किया जा सकता है। इन शिलालेखों में अक्षरों की जो आकृति पाई जाती है, भद्रवर्मा का काल 5वीं सदी में था और शंभुवर्मा का 6ठी सदी में। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि पूर्णवर्मा भी 6ठी सदी के लगभग तारुमा नगरी के राज सिंहासन पर आरूढ़ रहा होगा। यद्यपि इन शिलालेखों में से तारुमा के राजवंश तथा उसके इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, पर उनसे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णवर्मा के संबंध में पश्चिमी जावा अविकल रूप से भारतीय धर्म, भाषा तथा संस्कृति के प्रभाव में था। पूर्णवर्मा के इन 4 शिलालेखों के बाद के जो अन्य प्राचीन शिलालेख जावा से प्राप्त हुए हैं वे 8वीं सदी और उसके पश्चात काल के हैं, पर इस बीच का एक शिलालेख मध्य जावा के तुकमस नामक स्थान से मिला है, जो मेरु बभु पर्वत की उपत्यका में है। यह एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण है और केवल एक पंक्ति का है। अभिलेख इस प्रकार है: उसुचयम बुरुहानुजाता कवि छिच्छलावालुक निंगयेतयम कविचत प्रकीर्णा शुभ शीतोया संप्रभुता मेधय करीब गंगा। इस अभिलेख में न किसी राजा का नाम है और न किसी कोई तिथि या संबंध का ही दिया गया है। इसमें केवल एक ऐसी जलधारा का काव्यमय रूप में वर्णन है जो गंगा के समान पवित्र है, जिसका उद्गम कमल अम्बु रूह से हुआ है और जो कहीं शिलाओं के बीच से होकर बहती है और कहीं रेती पर से। लिपि को दृष्टि में रखकर इस अभिलेख को भी 6ठी-7वीं सदी का माना जाता है। यह अभिलेख इस कारण विशेष महत्व का है क्योंकि इसके ऊपर 16 आकृतियां या चिन्ह उत्कीर्ण हैं और उन सब का संबंध पौराणिक हिंदू धर्म के साथ है। इनमें शंख, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, माला, कमल और कुंभ की आकृतियां उल्लेखनीय हैं। त्रिशूल का संबंध शिव से है, शंख, गदा आदि का विष्णु से, कुंभ का अगस्त से और परशु का परशुराम से। यह शिलालेख इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि 6ठी-7वीं सदियों में मध्य जावा में भी पौराणिक हिंदू धर्म का प्रचार था और वहां के निवासी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। जावा के इन प्राचीन अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत है। 6ठी-7वीं सदी का एक अन्य अभिलेख मध्य जावा के दियंग पठार में पाया गया है, पर यह इतना अधिक घिस गया है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता। बाद के काल में जो अनेक अभिलेख जावा में मिले हैं उन पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।